ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की हर रसोई में भारत का कम से कम एक व्यंजन अवश्य शामिल करना उनका सपना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। श्री मोदी 9,80,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने के बाद भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इससे पहले भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर आशान्वित नजरों से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत पर दुनिया के इस भरोसे ने राज्यों को आत्मविश्वास भी बढ़ाया है, वहीं डबल इंजन सरकार के कारण विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में टेक्सटाइल, पर्यटन और टेक्नोलॉजी क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल इन तीनों क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा दे रही है, बल्कि एग्रो टेक्सटाइल, जियो और मेडिकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों पर भी काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिला शांति सैनिकों की स्थानीय समुदायों तक बेहतर पहुंच होती है और वे महिलाओं तथा बच्चों के लिए आदर्श के रूप में काम कर सकती हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि शांति मिशन में महिलाओं की उपस्थिति इसे और अधिक विविधतापूर्ण और समावेशी बनाती है। महिला शांति सैनिक शांति स्थापना में महिलाएं एक ग्लोबल साउथ परिप्रेक्ष्य विषय पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन दिनों नई दिल्ली में हैं। ये कार्यक्रम विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया है। भारत और इंग्लैंड ने आज मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि इंग्लैंड में चुनावों के कारण ये वार्ता रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा। दोनों नेताओं ने वार्ताकारों को सलाह दी है कि वे दोनों पक्षों के हित में विभिन्न बकाया मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। निर्वाचन आयोग 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। ज्ञानेश कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद आयोग का ये पहला सम्मेलन है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को विचार विमर्श करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में आज विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इंद्राज सिंह और पंकज सिंह के शपथ लेने के साथ शुरू हुई। प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली ने अन्य नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना कल सदन को संबोधित करेंगे। पिछली सरकार के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट भी कल पेश की जाएगी। 3 दिन का ये सत्र बृहस्पतिवार तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जयललिता को एक दयालु नेता और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में सराहा जाता है। रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड के साथ मैच में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 49 ओवर में 8 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कल दुबई में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरा मैच जीता। इधर बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, यूपी वॉरियर्स 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।